नारायण 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 राम राम राम। मनुष्य की उन्नति में अगर कोई खास बाधा है तो सुख भोग की बाधा है। ये सुख भोग की इच्छा है ना, उसकी इच्छा ममता भोग आशा ये बांधती है। इसमें भी एक बारीक बात है कि सांसारिक सुख बांधने वाला नहीं है। सुख की इच्छा है, सुख की कामना है, सुख की आशा है, सुख का भोग है, ये बांधने वाला है। तो सुख का भोग और सुख में क्या फर्क है? कहे सुख और दुख तो सत्य होने वाले हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता स्वाभाविक है। ये प्राकृतिक चीज है कि दोष नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है जाती है, जैसे रात और दिन आया करते हैं। तो रात आती है, दिन आ जाता, दिन आ जाते, फिर रात आ जाती है। ऐसे संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता। उसमें अनुकूलता में सुखी होना भोग है और प्रतिकूलता में दुखी होना भी भोग है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। भोग का लक्षण लेकर आया कि सुख अथवा दुख, इसमें किसी का जो साक्षात्कार होता है उसका नाम है भोग। तो सुख आ जाए और भोग न किया जाए, ये तो बताया है ना कि सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार तो होगा, सुख का भी ज्ञान होगा, दुख आ जाए दुख और ज्ञान होगा तो ज्ञान बाधक नहीं होता है, सुख का भोग बाधक होता है। यही संस्पर्श जा भोगा, संबंध जन्य जितने भोग हैं वे दुख जो नहीं, वे सुख भोग सब दुखों के कारण है। दुख यो न ये बते मानो दुखों के ही कारण है। और आदि अंत अंत आदि अंत वाले हैं, जितने सुख होते हैं उसका आरंभ होता है और अंत होता है, क्योंकि वो कर्मजन्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता व्यक्तियों के कर्मजन्य है। तो कर्म है उसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म का आरंभ होता है और अंत होता है। कोई भी काम करो उसका आरंभ होता है अंत। जैसे मैंने व्याख्यान शुरू किया तो आरंभ हुआ और समाप्त हुई, अंत हो गया। चातुर्मास हो रहा है, आरंभ हुआ और फिर अंत हो जाता है। ऐसे कोई क्रिया करो, क्रिया निरंतर नहीं होती। क्रिया का फल का भी संयोग और वियोग होता है, वो फल भी नित्य नहीं रहता है। कब नाशवान उतरे उतना आएगा, फिर उम्र खत्म होने पर समाप्त हो जाएगा। तो जिनका कारण कर्म है उसका भी आरंभ और अंत है, तो इसका फल भी आदि और अंत वाला है। तो संबंध जन्य जितने सुख है वे सुख है जो आरंभित होते हैं और अंत में होते हैं। मानो उसका आरंभ और अंत होता है, आरंभ होता है अंत हो जाता है, संयोग होता है और वियोग होता है, उसका संयोग वियोग होता ही रहता है। उसमें सुख और दुख आते, उन सुख दुखों में जो आसक्त होता है तो सुख में आसक्त होता है, दुख में सो द्वेष होता है। ये राग द्वेष दोनों गीता ने कहा, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो। ये राग और द्वेष व्यवस्थित है, व्यवस्था से स्थित है। तय और न बस मागत, इन दोनों के बसीभूत न हो। तो दोनों के बसीभूत हो जाता है राग द्वेष के, तो ये परिपंथी हैं, मानो मार्ग में लुटे रहे, परमात्मा की तरफ चले तो उस रास्ते में ये बड़े विघ्नदायक है, लूटे रहे हैं। मार्ग में जैसे लूटते हैं ना, ऐसे ये लूटते रहते हैं। तो नमस्मागच्छेत, इनके वशीभूत न हो, सा रखने और सुखी दुखी होना ये बांध है। जिसमें सुखी दुखी होना खास बांध से है। गीता ने कहा न प्रदेशेत प्रियम प्राप्य, सुख प्रिय लगता है शरीर के, इंद्रियों के, मन के अनुकूल घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु अच्छी लगती है, और शरीर इंद्रियांतरण के विरुद्ध विपरीत जो संयोग होता है, वस्तु का संयोग हो जाए, व्यक्ति का हो जाए, तो वो बुरा लगता है। तो सुख और दुख दोनों हुआ ना, इसमें गीता क्या कहती है, न प्रदृष्ट प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न होए, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्वेग न हो। तो हर्षित और उद्वेग होने से भोग हो जाता है, हर्षित होते हैं तो सुख का भोग हो जाता है, उद्विग्न होते हैं तो दुख का भोग हो जाता है, और भोग ही बांधने वाला है। तो इन दोनों के वशीभूत न होए, तो प्रिय अप्रिय तो प्राप्त होगा भाई, और इनका ज्ञान भी होगा। इंद्रियों के सामने, अंतकरण के सामने, शरीर के सामने अनुकूल परिस्थिति आवे तो अच्छी लगेगी, प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो बुरी लगेगी। तो अच्छी और बुरी लगना खराब नहीं है, ये तो होगा ही। इंद्रियों का, अंतकरण का, शरीर का स्वभाव है, इनका ज्ञान होगा। तो अच्छे बुरे का ज्ञान बाधक नहीं है, उनमें जो अनुकूलता मिलने पर हर्षित होना है, ये दोषी स्वास्थ्य ने बताया कि न प्रेष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति हो करके और हर्षित न हो, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न न हो। तो क्या रहे, स्थिर बुद्धि, हर्षित और उद्विग्न नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि की बड़ी महिमा है, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से अंत तक स्थिर बुद्धि का वर्णन है, स्थिर प्रज्ञ पुरुष का वर्णन है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो बुद्धि स्थिर होना एक और चीज है, और मन का स्थिर होना और चीज है। मनुष्यों के बैठी हुई बात है कि मन स्थिर होना चाहिए, तो मन स्थिर अच्छी बात है, उत्तम है, परंतु भगवद गीता मन के स्थिर को इतना ऊंचा दर्जा नहीं देती जितना बुद्धि के स्थिर को ऊंचा दर्जा देती है। बुद्धि का स्थिर होना क्या और मन का स्थिर होना क्या, मन का स्थिर होना कठिन पड़ता है, और बुद्धि का स्थिर होना कठिन नहीं है, इतना सुगम है। और मूल्य भी बुद्धि के स्थिर होने का जितना है, उतना मन के स्थिर होने का नहीं है। तो बुद्धि का स्थिर होना क्या है, जैसे आपके घर की कन्या है, आपने कन्यादान कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, खूब उत्साह से आपने कन्यादान कर दिया, और कन्या बड़ी सुदक्षिणा है, बड़ी अच्छी है। तो उसने जब अपने हाथ को पति के हाथ में पकड़ा दिया, पानी ग्रहण हो गया, ऐसे पानी ग्रहण होता है, लोग यूं करते, ये पानी ग्रहण प्राणी ग्रहण होता है, अंगूठे से संपूर्ण उसके हाथ और पकड़ा देना। तो ये पानी ग्रहण होते ही उसने उसको अपना पति स्वीकार कर लिया। उसमें पहले वो आगे चलती है, पीछे पुरुष चलता है, और उनके वचनों के देने के बाद में पुरुष आगे वो पीछे, वे वचन मांगती है कि ये मेरे वचन दो तो आपके पीछे आऊं। तो वो भी मांगता है, वो भी मांगता, वो ब्याह की पद्धति में सुनते ही हुआ। तो वो वचन दे देते हैं, तब वो पुरुष अगाड़ी वो पीछे हो जाती है, तो उनकी अनुयायी बन गई। अब अनुयायी बनकर के जो पतिव्रता हो जाती है, तो पतिव्रत हो गया ये क्या है, ये बुद्धि की श्रद्धा है, मन की श्रद्धा नहीं है। भाई मन को मन उसे अचल हो जाए ऐसा नहीं है, बुद्धि की श्रद्धा है। पतिव्रत एक धनी, बस एक है, वो एक ही है, कैसा ही हो भले। वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति करके अपमान, ऐसा कि अपमान नहीं करती, सम्मान करती है, आदर करती है, उनकी सेवा करती है, अपने पति की उसकी सेवा करती है। तो ऐसे उपति करके अपमान करने से दोष लगता है, सम्मान रखती है, ऐसी एक विलक्षण बात है। तो ये क्या है, ये बुद्धि की स्थिरता है। बुद्धि से जिसको पति मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, बस सदा के लिए मान लिया, उसके पीछे सती हो जाती है। जलती आग में बैठ जाए तो उसके गर्मी नहीं लगती, अग्नि बुरी नहीं लगती, कितनी आश्चर्य की बात है, आग बुरी न लगे। अरे बुरी क्या लगे, शरीर जल जाता है, उसमें कोई थोड़ी बहुत भी शिष्कारा भी नहीं करती, स्वाभाविक ही उतार स्तंगन पंख शीतल हो जाता है, ठंडा एकदम, उसमें शरीर आपसे आप जल जाता है। तो ये क्या है, ये बुद्धि की स्थिरता है। वो मन की स्थिरता जो एक में लगा दे वहां लग जाए, और जिससे हटाना चाहे हट जाए, ये मन का वशीभूत होना है। और वशीभूत कब होता है, कि जब वो भोगों में आसक्त नहीं होता, तब कर्ता के वशीभूत होता है। तो वशीभूत मन के लक्षण है, जहां से हटा चाहे हटा लो, जहां लगाना चाहे लगा लो, इतनी सामर्थ्य आ जाए तो फिर जहां लगाओ वहीं लग जाएगा वो ध्यान। ये मन की एकाग्रता है, मन की स्थिरता है। और बुद्धि ने एक निश्चय कर लिया, ये बुद्धि की स्थिरता है। तो साधक के लिए मेरे को साधन करना है, आध्यात्म उन्नति करना है, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, अनुकूल परिस्थिति मिले चाहे प्रतिकूल परिस्थिति मिले, कैसी ही क्यों न मिले, हम तो अपना साधन करेंगे। तो साधन में जिसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। शिष्य बनता है तो उसमें भी यही होता है कि मैं तो अमुक का शिष्य हूँ, अब हो गया हो गया, अब कैसे है वे, कहाँ है, जीवित है कि नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे पति जीवित है कि नहीं है, कैसे है, इसकी कोई परवाह नहीं, आपने तो एक को दे दिया। तो ये बुद्धि की स्थिरता है। स्थिर बुद्धि हो जाए तो स्थिर बुद्धि स्थिर रहे, ना प्रेरित प्रियम प्राप्त, नो द्विजित प्राप्त चा प्रियम, स्थिर बुद्धि। तो इसमें स्थिर बुद्धि हो जाता है जब साधन में, तो असमूढ़ उसकी मूर्छा चली जाती है। मन के स्थिर होने से मूर्छा नहीं जाती है, बुद्धि के स्थिर हो जाए अगर साधना परमात्मा में, तो उसकी मूर्छा चली जाती है, मोह मिट जाता है मोह। अंत में अर्जुन से पूछा भगवान ने, तुमने एकाग्रता से गीता सुना, और क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ। तो अर्जुन कह रहे नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया। तो ये मूढ़ता जाती है बुद्धि की स्थिरता से। बुद्धि में एक निर्णय हो गया कि मैं साधन करना है, वो साधन से विरुद्ध बात नहीं कर सकता। जिसको रुपये कमाना है, उसमें रुपये खर्च ज्यादा हो जाए, रुपये नष्ट हो जाए, वो नहीं सह सकता। पैदा तो ज्यादा हो जाओ, कितनी अधिक हो जाओ कोई परवाह नहीं, पर नाश नहीं सह सकता, क्योंकि रुपया इकट्ठा करना है। ऐसे जिसको साधन करना है, वो साधन से विरुद्ध बात नहीं सहता। कितना ही आराम मिले, सुख मिले, परंतु वो सुख को महाराज कुछ आदर नहीं देता। हमें सुख भोगना है, साधन करना है, तो उसे साधन करने की धुन होती है, वो सुख भोग में नहीं अटकता। तो स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, ये बुद्धि स्थिर होने से मूढ़ता चली जाती है। बुद्धि में विवेक शक्ति रहती है, मन में तो संकल्प विकल्प होते हैं और बुद्धि में स्थिरता होती है। एक निर्णय है ना बुद्धि सा निश्चय आत्मी का, निश्चय करने वाली शक्ति है अंतकरण की, उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। अंतकरण चतुष्ट है, वो अंतकरण एक ही है, वृत्तियां चार है, तो निर्णय करने की निश्चित करने की वृत्ति का नाम बुद्धि है। तो बुद्धि होने से वो निश्चय कर लेता है परमात्मा की तरफ का, तो फिर मूढ़ता नहीं रहती, फिर मोह कहां टिकेगा। सर्व बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, वो ब्रह्म वेत्ता हो जाता है। ब्रह्म वेत्ता होने से ब्रह्म में स्थिति हो जाती है उसकी। ये जो परमात्मा में स्थिति हम करना चाहते हैं, ये क्या है कि ये परमात्मा में स्थिति हमारी स्वतः है। मूढ़ता के कारण से पदार्थों में स्थिति कर लेते हैं, शरीर में स्थिति कर लेते हैं, कोई अधिकार मिले तो उसमें एक अभिमान कर लेते हैं कि मैं ये हूं। तो यह मैं नहीं होता, मैं यह नहीं होता है, परंतु उसमें स्थिति कर लेने से वो मूढ़ता आ जाती है। तो मूढ़ता चली जाए, असमूढ़ा स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मविद परमात्मा को जाना। तो परमात्मा के न जानने से संसार की आसक्ति होती है और परमात्मा को जानते ही आसक्ति मिट जाती है। फिर ब्रह्मविद परमात्मा को जानने वाला होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होती, ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो स्थित तो पहले से ही ब्रह्म में है, ब्रह्मविद न होने के कारण से अपनी स्थिति को पहचानता नहीं है। भाइयों बहनों ध्यान दो, स्थिति सबकी परमात्मा में है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो और चाहे दुष्ट हो, उसकी स्थिति सदा परमात्मा में ही है। जैसे ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, तो मन है छठा जिसमें ये तो है इंद्रियां प्रकृति में स्थित और ये स्वयं परमात्मा का अंश है परमात्मा में स्थित, तो ये प्रकृति के अंश पृथ्वी में प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और परमात्मा का अंश परमात्मा में ही स्थित रहता है। परंतु ज्ञान न होने से सांसारिक पदार्थों के संयोग योग को आदर करने से उसमें ये फंस जाता है, जिसे राग द्वेष करता रहता है, जो इसके शत्रु हैं तो ऐसे परिपंथ न हो, तो वो असमूढ़ हो जाने से ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्म होते ही ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ। तो न प्रदेश के प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्त प्रियम स्थिर बुद्धो असमूढ़ो स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ। तो ये कब होता है उसी लिए साधन बताया, बाह्य स्पर्श सुख अशक्त आत्मा, ये संबंध जन्य जितने सुख है वो बाह्य ही है सभी। कहते मन से चिंतन, मन से भी विषयों का चिंतन होता है तो वही बाह्य है, इंद्रियों से संयोग होगा तो वही बाह्य है, ये सब बाह्य है, ये पर है स्व नहीं है, ये बाह्य है। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, उनमें आसक्ति होती है तब तक ये स्थिर बुद्धि नहीं होता, असमूढ़ता नहीं होती, इसकी मूढ़ता नहीं जाती। तो ये बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा आसक्ति नहीं रखता है, विन्दत्यात्मन यत सुखम, उसको अपने अंतःकरण में सुख मिलता है। जहां बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं होती तो एक बिल्कुल सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो जब वो एक सुख को लेता है तो उसे क्या होता है कि वह सुख के न भोगने से परमात्मा के साथ एकता का है, सब्रह्म योग युक्त आत्मा, परमात्मा के साथ जो संबंध है नित्य संबंध है उससे अंतकरण युक्त हो जाता है, उस अंतकरण में तृप्ति हो जाती है। ये सुख लिया है, ये सुख है सात्विक हेतदग्रे विषमेव परिणाम है अमृतो हम तत्व सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादगम। परमात्मा की स्थिति होने, परमात्मा के साथ संबंध होने से स्थिर बुद्धि होता है ना, तो वो सुख कैसा है? आत्मबुद्धि प्रसाद जम, परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला, तो परमात्मा में बुद्धि लगी उससे प्रसन्नता से प्रसाद होने वाला सुख है। तो बिंदु त्याग सुखम अक्षय मनुते, वो अक्षय सुख होता है। सुखम आत्यंतिक तद बुद्धि ग्राही मत, वो आत्यंतिक सुख होता है। तो सुखम अक्षय मनुते, अक्षय सुख उसका क्षय कभी होता ही नहीं। प्रलय नोप जानते स्वर्गे पे नोप जाए, प्रलय महाप्रलय होता है तो भी उसको व्यथा नहीं होती, दुख आता ही नहीं। महास्वर्ग में भी उनकी उत्पत्ति होती नहीं, प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। ये स्वर्ग और प्रलय प्रकृति के साथ संबंध रहने से होते हैं, इनसे संबंध छूट गया, मूढ़ता चली गई, ब्रह्म की ब्रह्मणी स्थिति। तो अक्षय सुखम अश्नुते, उसका अनुभव करता है। अश्नुते का अनुभव करना है, साक्षात ठीक ठीक उसका अनुभव हो जाता है। तो बाह्य स्पर्श से अशक्त आत्मा कैसे हो, तो यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवं। संबंध जन्य जितने सुख हैं वे दुखों के कारण हैं, दुखों के जनक हैं। सुख भोगे और दुख न भोगे ये हो ही नहीं सकता। सुख भोगेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, जबरन भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख भोगा है तो सुख भोगे भोगी को दुख भोगना पड़ता है। चोरी करता है अपनी मर्जी से और कैद में जाता है दूसरों की मर्जी से, ऐसे पाप करता है, अन्याय करता है अपनी मर्जी से और 84 लाख जूनी नरकों में जाता है प्रतंत्रता से, तो पहले स्वतंत्रता से पाप करता है, फिर प्रतंत्रता से इसको दुख भोगना पड़ता है। तो सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। तो बाह्य न प्रतिषेध प्रियम प्राप्ति होता है, जैसे ही बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, क्योंकि यो दुख यो नहीं होते हैं दुखों के कारण है। जब ये मालूम हो जाए कि सांप दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है और हाथ घुमावे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु काट जान से आदमी मर जाता है तो सांप को सूता ही नहीं, सांप दिखता है ऐसे ऐसे चलता है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसे चमक दिखती है, बड़ा सुंदर दिखता है और ऊपर से बड़ा स्पर्श से सुख देने वाला है, परंतु आदमी छूता नहीं, देखते काट जाकर मर जाएंगे। ऐसे जितने भोग हैं सुंदर दिखते हैं, परंतु इनके साथ संबंध जोड़ने से सांप के काटने से एक शरीर मरता है और ये भोग भोगने वाला मरता ही रहता है, इसका कोई अंत आता ही नहीं। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि हो गए चले गए, फिर भी इसके दुखों का जन्म मरण का अंत नहीं आता, ये सदा ही भोगता है। तो ये जहर बड़ा जबरदस्त है, ये मामूली जहर नहीं है। तो उसमें सो आसक्ति रहित हो जाए तो उसको अक्षय सुख मिलता है। सब्रह्म योग आत्मा सुख अक्षय वस्तु थे, इस बात से यही स्मरण लाभ होगा। जो भोग है दुखों के घर है, आदि आदि और अंत वाले हैं, दुख पैदा करते हैं, दुख भोगना पड़ेगा 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 बार बार। दुख पूरे कर्मों का फल भोग करके फिर अगर जाएगा तो कर्मों का अंत नहीं आता, तो दुखों का अंत नहीं आता, दुख भोगना ही पड़ता है और अनंत काल तक दुख भोगता रहता है। तो ये क्या करे कि उनसे अलग हो जाए। न तेज रमते बुध, वो बुध विवेकी है, वो उन भोगों में रमन नहीं करता। शक्नोति है यह सोडुम प्राग शरीर विमुक्त, शरीर नष्ट नहीं हो उनसे पहले ये काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सह लेता है। ये वेग विचलित नहीं करते, तो ये विचलित किसके नहीं करते, बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा उसको नहीं, तो ये विचलित कर देते हैं, तो विचलित नहीं होता। ना कोई सुख की प्राप्ति के लोभ में आकर विचलित होता है, न दुख के भय से विचलित होता है, विचलित कर ही नहीं सकते। क्यों? कि सुख दुखों से ऊपर जो सुख है वो उसके अनुभव में आ गया, अब वो विचलित नहीं होता। तो न विचलित होने से उसको एक सुख मिलता है, विन्दति आत्मन यत् सुखम, सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम, तो उसको अक्षय सुख मिलता है। तो वो मिलता है कब? ये बाह्य सुख है इन भोगों में आसक्ति न करने से। मान कोई करता है तो सुख होता है, अपमान कर देता है तो दुख होता है। तो मान अपमान से सुखी दुखी होता है तो उसकी स्थिति स्थूल शरीर में है। अभी तो बहुत नीचे बैठा है, स्थूल शरीर में बैठा है। अगर नाम को लेकर के कोई निंदा स्तुति करता है तो नाम जो कल्पना से किया गया था, पेट में नाम नहीं था, जन्मने पर भी नाम नहीं था, 10 दिन के बाद नाम रखा गया, उस नाम के साथ में तादात्म कर लेता है, नाम के साथ में अपने को मिला लेता है, तब निंदा से दुख होता है, प्रशंसा से सुख होता है। तो निंदा प्रशंसा से दुख होता है तो उसकी स्थिति नाम में है, आदर निरादर से सुख दुख होता है तो उसकी स्थिति स्थूल शरीर में है। तो बाहर चीजें पर चिपकी हुई चीज के भी आने जाने में सुखी दुखी होता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे होगा? वो तो सुख दुखी भोगेगा। और सुख की जिसके शौक रहती है उसको फिर भगवान भोगने में शक्ति आसक्ति रहने से भगवान भोग योनि देते हैं। फिर 84 लाख योनि है भोग, जिनमें सुख दुख भोगता रहो, सुख मिलता रहेगा दुख मिलता रहेगा। तो भगवान कहते रहे यहाँ क्यों तकलीफ देख रहे, सुख देख भोगने वाली जोनियों में चला गया, इच्छा तो तैने कर ली, जोनी मैं बदल दूंगा। तो वह जोनी बदलने से सुखी दुखी होता ही रहेगा, ये जन्मता मरता ही रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं आएगा। तो ये किसने गए होता है संबंध जन्य सुख भोगने से, तो संबंध जन्य सुखों से ऊंचा कैसे उठे? इसमें ये ज्ञान हो जाए कि ये सुख है ये दुख का कारण है, दुख योन है एव बिल्कुल दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं, अब मिट जाते हैं। तो ये सुख आता है ना, आदर का है, प्रशंसा का है, ये सुख आता है। ये जो भगत होते हैं ना, ये हमारे सेवक हमारे भगत हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। सुख देंगे और सुख भोगने लग जाओगे तो अलग खसक जाएंगे। कहते हुए बाबा जी पहले वाले नहीं गए, तो पहले वालों के क्या ने किसने बिगाड़ा? आपने बिगाड़ा, सुख दे देकर हिला तो दिया बेचारों को, अब धोखा देते हो, अब सुख तो दो। अब वहां बढ़ने से रहते थे तो भिक्षा आती थी, पाया करते थे। एक दिन एक सज्जन हलवा बना भी बाल्टी भर के ले आया, और कैसे लाया है? वहां प्रबंध हमारे अमृत राम जी वो करते थे, भिक्षा का प्रबंध है ना करने का। उन्हें बोले किसने कहा? मुख शेठ ने बोला है कि तुम शेठ को पूछ यहाँ कि रोजाना भेजेगा क्या? तो रोजा तो नहीं आ रही, तो भाई क्यों जी बिगड़े हमारे? ठीक है, हमारे जो मिलता है वो ही खाएंगे, एक दिन खा लेंगे, बीच जी बिगड़े तो ले जाते रहिए, क्यों हमारे जीव खराब करें? इस वास्ते में ले जी। तो ये खराब कर देते जीव, आदर सत्कार लेकर के आदत बिगाड़ देते हैं। आदत बिगड़ी हम चाहने लगे खस जाते, फिर अलग हो जाते हैं। जैसे अप्सराएं होती है ऐसे ये है। कलकत्ते में रहता था तो एक संत मिले, उनसे मिलने को मैं गया तो बैठे, ये देवताओं में कैसे बैठे हो तुम? देवताओं का स्वभाव है अच्छे से भोग देंगे, अगर आप मिल जाओगे तो बस गिर जाएंगे, फिर रो बैठे। ऐसी दशा तो देवताओं में कैसे बैठे हो ना, कलकत्ते में क्यों बैठे हो? आपको खुल का भाता है, आपको बाजरे की रोटी भाती नहीं, इस वास्ते यहाँ पर आए हो, बस सावधान रहना, ये देवता है, ये हिला देते हैं तो फिर ठुकरा देते हैं, फिर कहते बाबा जी वो नहीं गए पहले वाले। ऐसी बात होती है, और पहले वाले कैसे? पहले भोगों से अलग रहते थे, अब हिल गए, अब हिल गए, मुश्किल हो गई। तो इसमें सावधान रहना चाहिए, जो थोड़ा बहुत भी साधन कर ऊंचा उठता है उसको इस मान बड़ाई से सावधान रहना चाहिए। ये भोग बड़ा भयंकर भोग है, सुख का भोग है, ये आदर का भोग है, प्रशंसा का भोग है, बड़ा भयंकर है, बड़ा सूक्ष्म है। कितना विचित्र है, थोड़ी सी बात बताएं। अपना नाम हो जाए, मरने के बाद भी चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा होती रहे, मेरा नाम होता रहे, ग्रंथ बनाओ, मकान बना दो, स्मारक बना दो, कुछ न कुछ जिससे मेरा नाम होता रहे। तो ये मान बड़ाई की इच्छा है, ये मरने के बाद भी चाहता है। अब इतनी चाहता चाहना बड़ी है, उसको परमात्मा तत्व की कैसे प्राप्ति होगी, उसका तत्व का ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो सकता। भोगों में रखा है तो उनको फिर भगवान भोग योनि में ही भेजते हैं, तुम्हें भोग की शौक है तो जाओ 84 लाख योनि, ऐसे हमारे कम नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें जाओ सुख दुख भोगो, ये तुम्हारे को शौक है। ज्यादा शौक है तो नरकों में भेजते हैं, सुख की शौक है तो स्वर्ग में भेजते हैं, वहां भेजते हैं, वहां भी छीणे पुण्य मरते लोग गता गतन काम काम लभंते, ऐसे सुख दुख भोगते ही रहते हैं। तो बाह्य स्पर्श से बाह्य स्पर्शों में आसक्ति वाला कभी भी सुखी नहीं होता। तो इसमें राग और द्वेष दोनों होते हैं, अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, दोनों लूटते रहते हैं, ये सुख दुख के थपड़े खाते रहता, जन्मता मरता रहता। तो उपाय क्या है कि किसी स्त्रियों में ना विषयों के संबंध से सुख भोगे, अनुकूलता से न सुख भोगे, न आदर सत्कार से सुख भोगे, न प्रशंसा से सुख भोगे, तो सुख के भोग का ये निराकरण कर देता है, निराकरण कर देता है। तो दुख का भोग तो आप साहब अनस्वीकार की होता है, रुचिकर होता नहीं, तो इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो इसका कल्याण हो जाता है। तो सुख भोग से सावधान रहना ये साधक का खास काम है। जो साधन करना चाहता है उसको सावधान रहना चाहिए। इसमें ये भगतिया है ना, महाराज महाराज करे, लंबा लंबा हाथ जोड़े, दंडोत करे, इनसे सावधान जाते रहना। ये खतरे की चीज यही है, ये डेंजर नहीं देते है ना, ये भी यहाँ खतरे की चीज है। तो खतरे की चीज है, इनसे सावधान रहे। अपने जयराम जी बस उजला राम राम रख, ऐसा मेरा ने कीजिए और बस आदेश लगी नहीं, और कुछ सर नहीं तो भाई बड़ा भयंकर जमाना है और बड़ी भयंकर स्थिति है। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवावधि चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 10 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर बीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।